नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों, झांकियों में शामिल कलाकार और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, विभिन्न पार्टियों के नेता प्रचार में जुटे। अमेरिका में संघीय न्यायाधीश ने जन्म आधारित नागरिकता का अधिकार समाप्त करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच के चोट के कारण मैच बीच में ही छोड़ने से अलेक्जेंडर ज्वेरेव पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेटों, स्वयंसेवियों, कलाकारों तथा जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। आज प्रधानमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री मोदी कलाकारों और एनसीसी कैडेटों के साथ बात करेंगे। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में संविधान की 75वीं वर्षगांठ और जन भागीदारी की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। परेड में 300 कलाकार देश के विभिन्न हिस्सों के वाद्य यंत्रों के साथ सारे जहां से अच्छा की प्रस्तुति देंगे। इस वर्ष विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार की 31 झांकियों का मुख्य विषय होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस परेड में भगवान बिरसा की 150वीं जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौसम विभाग पर आधारित झांकियां भी शामिल होंगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए वे कल रात नई दिल्ली पहुंचे। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान श्री सुबियांतो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए समूचे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्य समारोह जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह की अध्यक्षता करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की शुरुआत की। ये निगरानी प्रणाली युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता में वृद्धि करेगी और इसके अत्याधुनिक सेंसर भविष्य के युद्धों की बेहतर तस्वीर देने में सक्षम होंगे। एक रिपोर्ट।
ये प्रणाली इस वर्ष मार्च से भारतीय सेना में 3 चरणों में शामिल की जाएगी। इस प्रणाली की मदद से विशाल भूमि सीमाओं की निगरानी करने, आक्रमणों को रोकने और युद्ध की स्थिति का सटीक विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये प्रणाली खुफिया तंत्र और निगरानी को कई गुना बढ़ा देगी। इसके शामिल होने से भारतीय सेना में डेटा और नेटवर्क संचालन की दिशा में नई शुरुआत होगी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में संजय प्रणाली मुख्य आकर्षण रहेगी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों का प्रचार तेज हो गया है। एक रिपोर्ट।
भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन हासिल करने और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम पटेल नगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाली बलजीत नगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मंगोलपुरी, नई दिल्ली और द्वारका निर्वाचन क्षेत्रों में कई जनसभाएं करेंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजफगढ़, उत्तम नगर और द्वारका निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो करेंगे। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मादीपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक मेगा रैली करने वाले हैं। पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बायोमेट्रिक मतदान प्रणाली को अनूठा बताते हुए कहा कि इससे फर्जी मतदान और एक से अधिक बार मतदान करने की घटनाओं में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि केवल सही मतदाता ही मतदान कर रहा है। आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन निर्वाचन प्रबंधन निकायों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक में आज विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि इन सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बैनर्जी, डीएमके पार्टी के ए राजा, कांग्रेस के नासिर हुसैन और इमरान मसूद तथा समाजवादी पार्टी की मुहिबुल्ला शामिल हैं। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने आरोप लगाया कि श्री कल्याण बैनर्जी ने समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने घोषणा की है कि विश्व थिरुकुरल सम्मेलन जल्द ही नई दिल्ली में आयोजित होगा। आज पुदुचेरी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मोहन सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉ मुरुगन ने कहा कि थिरुकुरल की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है और ये पुस्तक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में मानी जाती है। महाराष्ट्र में आज सुबह भंडारा स्थित आयुध निर्माण इकाई में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार विस्फोट के समय आयुध कारखाने में कुल 13 लोग काम कर रहे थे। कारखाने की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि बचाव दल घटनास्थल पर तैनात हैं और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने 16 जनवरी को हुए हमले के मामले में कल अभिनेता सैफ अली खान का बयान दर्ज किया। 16 जनवरी को एक व्यक्ति ने अभिनेता के घर में घुसकर उन पर कई बार चाकू से वार किया था। पुलिस को दिए गए अपने बयान में अभिनेता ने बताया कि उन्होंने किसी तरह हमलावर को धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद वे घर के कर्मचारियों और बच्चों के साथ बाहर निकल गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला मामले में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में काफी प्रगति हुई है, इसलिए अभी अन्य पहलुओं की जांच भी जरूरी है। मुंबई में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कल जाने माने फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुनाई। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के अनुसार राम गोपाल वर्मा को कैद के साथ 3,72,000 रूपये का मुआवजा भी देना होगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश का प्रमुख उद्यमी बनाने के लिए कृतसंकल्प है। उपराज्यपाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के युवा प्रमुख उद्यमी के रूप में उभरकर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आज 101वीं जयंती है। इस अवसर पर बिहार के समस्तीपुर में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने कई सुधारात्मक कदम उठाए, जिससे बिहार सामाजिक जागरूकता के नए युग में प्रवेश कर गया।
संक्षिप्त काल में कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकल्प का नया इतिहास लिखा, सदियों की जड़ता को तोड़ दिया। उन्होंने बड़ी आबादी के लिए संभावनाओं के अपार द्वार खोल दिए। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने समता युग की नई शुरुआत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि श्री ठाकुर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन समाज में बालिकाओं के अधिकार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से भारत में पहली बार 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। एक रिपोर्ट।
The cat sat on the mat.
भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिवस बाल विवाह, भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता जैसे गंभीर मुद्दों को समाप्त करने की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और लड़कियों को समान अवसर देने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। भारत सरकार ने बालिकाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, नंदा देवी कन्या योजना, CBSE उड़ान योजना आदि शामिल हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की थी। इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, उनके अधिकार और उन्हें विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। समाचार कक्ष से जया भारती।
और अब खबरें महाकुंभ से।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उत्तर मध्य
श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने चिकित्सा सेवा के लिए भी व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी रेलवे पूरी तरह तैयार है।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि महाकुंभ 2025 के दौरान 29 तारीख को आने वाले मौनी अमावस्या पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मेडिकल टीम और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रयागराज जंक्शन और 8 अन्य रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस कुल 34 मेडिकल बूथ संचालित है।
प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे हमारी मेडिकल की टीम विद डॉक्टर्स विद पैरामेडिकल स्टाफ और प्राथमिक चिकित्सा की जो भी मेडिसिन और जो भी इक्विपमेंट है उनके साथ उपलब्ध है।
उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी आपात चिकित्सा की स्थिति से निपटने के लिए प्रयागराज जंक्शन, नैनी, सुबेदारगंज और प्रयाग स्टेशन सहित 5 स्टेशनों पर ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं।
5 स्टेशनों पे हमने ऑब्जर्वेशन रूम स्टेब्लिश किया हुआ है। ये एक तरह का मिनी ICU है। इसमें द्वितीयक स्टेज की जो चिकित्सा की सारी सुविधाएं उपलब्ध है।
इन व्यवस्थाओं के अलावा रेलवे परिसर में एम्बुलेंस भी तैनात किए गए हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसमें देश में अवैध रूप से या अस्थायी वीजा के आधार पर रह रहे लोगों के बच्चों को अमरीकी नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। अमरीका के जिला न्यायाधीश जॉन कोहेनर ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहली सुनवाई के दौरान आदेश को घोर असंवैधानिक बताते हुए इसके अमल पर 14 दिन की अस्थायी रोक लगा दी। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने आज नई दिल्ली में पहले खो खो विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय पुरुष और महिला खो खो टीमों को बधाई दी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्रीमती खडसे ने पुरुष और महिला टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये देश के पारंपरिक खेल की जीत है।
हमारे कंट्री का भी अगर ये खो खो पारंपरिक हमारा गेम है, आज ओलंपिक में जाता है तो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। हमारे पूरी दुनिया इस खेल को समझेगी, इस खेल को देखेगी।
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच के मैच से हटने के बाद जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ने आज मेलबर्न में अपने सेमीफाइनल मैच के दौरान चोट के कारण मैच से हटने का फैसला लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले NCC कैडेटों, झांकियों में शामिल कलाकार और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, विभिन्न दलों के नेता प्रचार में जुटे। अमेरिका में संघीय न्यायाधीश ने जन्म आधारित नागरिकता का अधिकार समाप्त करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच के चोट के कारण मैच बीच में ही छोड़ने से अलेक्जेंडर ज्वेरेव पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।